रात आती है मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है मेरे बाबा।
ओम शांति। कोई नई बात नहीं हो रही है, हम और आप 5,000 साल पहले भी यहाँ बैठे थे, अभी भी बैठे हैं और अनेक बार बैठते रहेंगे। जब मुझे बताया गया कि 1 क्लास पहले ज्ञान सरोवर में होना था, फिर ओम शांति भवन में हो रहा है, तो ऐसे लगा कि हम बाबा के साकार बाबा के और नजदीक आ गए हैं, क्योंकि वास्तव में बाबा की जो कर्म भूमि रही है वो पांडव भवन ही रहा है। उसके तो खैर बहुत सारे यादगार हैं, लेकिन ओम शांति भवन का भी मुझे याद आता है कि जब ये बन रहा था तो आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी कोई भी यज्ञ का वारिस ब्राह्मण बच्चा आता था तो उसको साथ ले आती थी वहां पकड़कर, और उसको ऐसे बताती थी जैसे वो मालिक है। अंकल स्टीव नारायण आया, उनको पकड़ के लाए, ये सब दिखा रही हैं, ये देखो ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये ऐसे जैसे हर एक वारिस बच्चा इसका मालिक है। फिर हमने ये भी देखा कि जब ये भवन बन रहा था तो गवर्नमेंट की तो हमेशा विजन आता है, तो यहाँ के कलेक्टर ने कंस्ट्रक्शन रोक दिया और बोला कि पहाड़ को काटना मना है और कंस्ट्रक्शन स्टॉप। तो पर मैं यहाँ पर था, दादा आनंद किशोर जी थे, हम दोनों को सिरोही भेजा गया कि कलेक्टर से मिलो और कंस्ट्रक्शन को चालू कराओ। तो हमको तो पक्का फेथ रहता ही है कि बाबा का काम है, रुकेगा नहीं। कलेक्टर के पास गए तो उसने कहा, वहां की लोकल सिस्टर भी गई साथ, कि ब्रह्मा तुम्हारी क्या पब्लिक सर्विस करती है, है? तो हमने कहा जी पब्लिक सर्विस आप किसको कहते हैं, कहता आपकी बहुत अमीर संस्था है, क्या करते हैं गरीबों के लिए। तो मैंने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और मैंने कहा जी ये रुमाल जो है ये कितने का होगा, है? 3 रुपए का तो होगा उन दिनों में। बोला हाँ। तो मैंने कहा भारत में कितने गरीब हैं, कितने करोड़, और उनको केवल 1 टाइम एक रुमाल दिया जाए तो कितना पैसा लगेगा, और उससे कोई गरीबी तो दूर होगी नहीं। आपके ख्याल में ब्रह्मा कुमारी के पास इतने पैसे हैं जो आप कह रहे हो अमीर संस्था है। खैर फिर उसने बोला यहाँ क्या इधर उधर क्या करते हैं। तो मैंने लोकल बहन एक शारदा बहन थी उसको कहा इनको बताओ गांव में कितने सेंटर हैं आस्था, उसने बताया। फाइनली ये काम होते हैं थोड़ा बहुत लौकिक परिचय बाबा निकाल देता है। तो बात करते करते उसने कहा कि मेरी पत्नी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, क्योंकि मैं दिल्ली से आया था ना, तो थोड़ी जैसे होता ना क्लोजनेस एक तरीके से आ जाती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है हम दिल्ली जा रहे हैं, कोई संदेश वगैरह दे दो। तो फाइनली उसने लिख दिया कि कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड है इसलिए इसको पूरा करना जरूरी है, इसको अलाउ कर दिया जाए। तो कहने का भाव ये है इस तरह के हमारे काम होते रहते हैं। तो जब भी किसी जगह जाओ तो उसकी पुरानी यादें आती हैं। अच्छा, अब रही बात कि देखिए हमारा बाबा शुरू से लेकर बहुत प्यार से बच्चों को आगे से आगे ले जा रहा है, चाहे कितनी भी ऊंची चढ़ाई हो जाए बाबा साथ है। और बाबा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो सफलता का ही है। लेकिन धीरे 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 बाबा पढ़ाई को मंजिल के अनुसार, समय के अनुसार और सूक्ष्म करता जा रहा है। हम सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा का भी ऐसे ही था। पहले वो यहाँ के अलौकिक कारोबार में भी काफी हिस्सा लेते थे, धीरे धीरे उपराम होते गए। हम सब ने देखा, बात करते करते साइलेंट हो जाते थे। तो इसी प्रकार से हमको भी हर सीजन के बाद बाबा एक नई सूक्ष्म मंजिल की तरफ ले जाते हैं। तो हम आपका ध्यान, ये जो पहली मुरली इस सीजन की कली है, उसमें आप देखेंगे कि बाबा ने खास तौर पे ये कहा है कि सुनने सुनाने जो अब तक हम लोग करते आए हैं, बाबा कहते रहे कि वाचा सेवा करो, साथ साथ मनसा सेवा भी करो। लेकिन इसमें स्पष्ट बाबा ने दो बार कहा है कि अब सुनने सुनाने से काम नहीं चलेगा। हम लोग भी प्लान बना रहे थे, हमें गीता के भगवान की ड्यूटी मिली हुई है, यहाँ भाषण करेंगे, यहाँ फंक्शन करवाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा, और सारी मुरली में एडिशनल ज्ञान का एक भी शब्द नहीं है, बाबा ने कहा सुनने सुनाने से अब परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा वृत्ति के द्वारा। अच्छा, इसका थोड़ा इशारा बाबा पहले भी देते रहे हैं कि तुम अपने चेहरे और चलन से सेवा करो, बोलना ना पड़े, अपने आप सेवा हो इत्यादि। अब तो बाबा ने स्पष्ट ही कह दिया। अगर आप देखेंगे तो इसका कारण भी स्पष्ट है कि दुनिया के लोग धीरे धीरे अति मायावी हो गए। अब उनका और हमारा फासला बहुत बढ़ गया। तो पहले कुछ आत्माएं थी, निकलना था जिनको ब्राह्मण जीवन वाली, वो सुन सुना के संदेश लेकर आ गई। अभी तो उनकी ये तमो प्रधानता की हालत है कि आप उसको कुछ भी सुना दो तो अब लग तो उनकी रुचि नहीं है। रुचि है भी तो जैसे कितने मटके पर कोई चीज डाली जाती है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो बाबा को चाहते हैं कि हम ऐसी मेहनत क्यों करें जिसका कि कोई लाभ ना होता। इसलिए बाबा ने इसमें दोनों बातें हैं, हमारी भी मंजिल की तरफ जाने का टाइम कम होता जा रहा है और उन लोगों की भी अवस्था चेंज होती जा रही है। तो अब के बाबा ने ये कहा कि अपनी वृत्ति द्वारा परिवर्तन करो। और इतना वृत्ति पावरफुल बने जो इसको ये भ्रष्टाचार कहते हैं, ऐसे आत्माएं भी एकदम उसी वृत्ति में चेंज आए और वो परमात्मा के प्यार में परमात्मा को याद करने लग गए। तो इस बात के ऊपर नेचुरली ब्राह्मणों का विचार चलता है। बाबा ने पहले भी कहा था वृत्ति द्वारा सेवा करो, मनसा सेवा करो। और मनसा सेवा बाबा कहते हैं कि शुभ भावना शुभ कामना रखो, यही मनसा सेवा है सबके लिए, शुभ भावना शुभ कामना रखो। फिर भी कई ब्राह्मण यही कहते हैं कि शुभ भावना शुभ कामना तो हम रखते हैं, हमारा इसके लिए हमारी पूरी पुरुषार्थ है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी हैं, उनका चलन ही ऐसा है, उनका व्यवहार ही ऐसा है कि हमारे अंदर उनके लिए शुभ भावना उठती ही नहीं। क्या करें, क्योंकि जब हम देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं तो शुभ भावना तो पैदा ही नहीं होती, तो क्या किया जाए। उधर बाबा कहते हैं कि सबके लिए रखो, तो जनरली तो सबके लिए रखना हम कह सकते हैं जिसको हमने देखा ही नहीं, लेकिन जिनसे रोज व्यवहार होता है तो उनके लिए शुभ भावना शुभ कामना कैसे रखें, यह प्रश्न। सीधी बात यह है कि अगर हम यूं कहें कि उनका उनका प्रभाव और पावर ज्यादा है, अशुभ वाले का प्रभाव ज्यादा है और शुभ वाले का कम है। मान लो किसी जगह बहुत गंदगी है और सफाई करने वाले भी हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा है कि सफाई वाला समझता है कि मैं नहीं कर सकता, या किसी जगह बहुत बैड स्मेल है और आपके पास खुशबू है तो आप समझते हैं कि इतनी है कि मेरी खुशबू सारी भी खत्म हो जाए तो भी ये दूर होने वाली नहीं है। अच्छा, तो सार में हम यही कहेंगे कि वो ज्यादा प्रभावशाली है, हमारे ऊपर वो प्रभाव डाल जाता है जो हम अपने मन में यहां तक सोचने लग जाते हैं ये बड़ा होपलेस इम्पॉसिबल है कि हम क्यों ना अपनी शुभ भावना बचाकर उन लोगों को दे जो इसका कुछ लाभ लेंगे, या तो वेस्ट हो जाएगी। इस प्रकार की बातें मन में आती हैं, पर बाबा ये कह रहे हैं कि शुभ अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। तो दूसरे शब्दों में हमारी वृत्ति की पावर को इतना बढ़ने की आवश्यकता है, इतना बढ़ने की आवश्यकता है कि वो पहली बात तो किसी भी अशुभ से प्रभावित ना हो। प्रभाव डालना तो नेक्स्ट, किसी भी अशुभ से, क्योंकि आपके अंदर जितना शुभ है उतना शुभ है, तो आप अशुभ से क्यों प्रभावित हो, तो उसको पावरफुल बनाना पड़ेगा। उसके बाद और ज्यादा पावरफुल हो जो हमारा प्रभाव उस पर पड़े, तभी तो विजय होगी। अच्छा, अब प्रश्न ये आता है कि अपनी वृत्ति को पावरफुल कैसे बनाए। अच्छा, तो बाबा ने यह भी कहा हुआ है कि आत्मा का या मन का मनोवृत्ति का भोजन है शुभ संकल्प। शुभ संकल्प और श्रेष्ठ संकल्प ही आत्मा का भोजन है, यह भी हमें पता है। अब लेकिन वो शुभ संकल्प श्रेष्ठ संकल्प कैसे आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, मनोवृत्ति को शक्तिशाली बनाते हैं, इसको हमें थोड़ा सा और अपने मन में क्लियर करना है। जैसे हम शरीर के लिए जानते हैं कि शरीर का भोजन मान लो एप्पल जो है, एप्पल शरीर के लिए अच्छा है, ठीक है, तो हम एप्पल को खाते हैं, एप्पल को हमने खा लिया, एप्पल तो खत्म हो गया। अब उसने अंदर जाके क्या किया, ऑटोमेटिकली करता है, अगर सारा शरीर बाकी ठीक है तो एप्पल कुछ ऐसी शक्ति पैदा करता है जो शरीर को शक्तिशाली बनाता है। अब आ जाओ आत्मा पर या मन पर या वृत्ति पर। अब बाबा ने कहा कि वृत्ति का शक्तिशाली बनाने का एक ही तरीका है, क्योंकि उसका फूड ही, जैसे शरीर का फूड एप्पल हो गया, उसका भोजन ही है शुभ संकल्प। अब क्योंकि ये सूक्ष्म है तो हम इसको पूरी तरह यूज नहीं करते, और अब करना पड़ेगा, क्योंकि वाचा सेवा में आपको ज्ञान धारण किया हुआ अच्छी तरह, सारे ज्ञान की पॉइंट आपके अंदर हैं, वर्षों से लेकर आप जो शुरू कर दें तो आप सारा ज्ञान सुना देंगे, वो भी एक ताकत है। परंतु अब बाबा कहता है कि सुनने को तैयार नहीं, और समय भी नहीं ऐसा रहेगा जो आपको उसको सृष्टि चक्कर समझाए। इसलिए अब वृत्ति को अगर पावरफुल बनाना है, शुभ संकल्प से बनाना है, तो अब हमें थोड़ा सा ये सोचना है कि शुभ संकल्प कैसे काम करता है, क्योंकि शुभ संकल्पों का भोजन करेंगे तो आत्मा में शुभ की शक्ति बढ़ेगी, वृत्ति जो है पावरफुल होगी शुभ से, और फिर अशुभ को ना तो हमारे पर प्रभाव करेगा बल्कि हमारा प्रभाव उस पर जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए सवेरे सवेरे आपने शुभ संकल्प किया, नेचुरली व्यक्ति वही संकल्प करता है जिसको वो सोचता है इसकी मेरे में थोड़ी कमी है। मान लो कोई कमजोर आत्मा है तो यही शुभ संकल्प करेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा मेरे साथ है, ऐसे ही करेगा ना। मान लो कि आत्मा डिस्टर्ब हो जाती है तो ये शुभ संकल्प करेगी कि आज मुझे सदा सारा दिन मधुर वाणी रहना है, तो मैं मीठा बोलूंगा तो नेचुरली ध्यान रहेगा। तो कोई भी शुभ संकल्प आप एक करते हैं। अच्छा, आपने संकल्प किया, बहुत अपने से करना है कि किसी को बोल भी नहीं रहे, मन में कर रहे हैं कि मैं एक संकल्प, फॉर एग्जाम्पल कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्मा हूं। अब ये संकल्प आपने कर लिया, इसके बाद क्या हुआ? जैसे सेब आपने खा लिया वो तो दिखता है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली असर करता है, तो आत्मा का भोजन तो सेब नहीं है, आत्मा का भोजन तो शुभ संकल्प है। अब हमने ये शुभ संकल्प किया, शुभ संकल्प खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ? आपके ख्याल में उसने कुछ अंदर जाके असर किया या नहीं किया? किया, क्योंकि मैंने अपने लिए ही अच्छा संकल्प किया, अपनी वृत्ति को चेंज करने के लिए किया, क्योंकि जो आज मेरी वृत्ति है किसी की भी, वो तो जो कुछ हमने किया है, जो कुछ हमने समझा है, सुना है, प्रभावित किया है या प्रभाव में आए हैं किसी भी प्रकार से, वो इस लेवल पर है। अब मुझे उसकी लेवल को बढ़ाना है। अब बाबा ने कहा भोजन ये है, तो अब हमने इसको इम्पोर्टेंस देना है कि शुभ संकल्प ही भोजन है, और ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन शुभ संकल्प कर लिया तो उससे वृत्ति बदल जाएगी, क्योंकि वृत्ति को नीचे आने में भी काफी टाइम लगा। कोई रोग होता है पुराना रोग, तो हमारा रोग तो 2500 साल पुराना है, और तरह तरह के प्रभाव हैं, और उसमें हम ज्ञान से हम लोग अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं, उसका बीज हमारे अंदर है। तो अब हमें जैसे किसी दीवार को आपने तोड़ना हो और वो 50 हथौड़े मारने से टूटे, पर आप पहला हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा? दीवार पे तो असर भी नहीं होगा, बल्कि हथौड़ा कांपेगा, आपका हाथ भी कांपेगा, दीवार तो स्ट्रांग चीज है। पर आप सोचते हैं कि पहले की क्या जरूरत है, उसने तो कुछ किया ही नहीं, 50 में सीधा ही मार ले, तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए इसमें थोड़ा धैर्यता चाहिए कि मन में जब अंडरस्टैंडिंग है कि शुभ संकल्प जरूर असर करेगा तो धीरे धीरे ही करेगा, जितना ध्यान रखेंगे उतना करेगा, तो इस पे हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि कोई भी शुभ संकल्प वेस्ट नहीं जाता। और ब्राह्मण का शुभ संकल्प है, ब्राह्मण दुनिया में तो हाथ में गंगा जल लेकर करते हैं, सूर्य की तरफ देखकर करते हैं, उपवास करके करते हैं, पर हमारा तो रूहानी ब्राह्मण का, सच्चे ब्राह्मण का शुभ संकल्प है, तो अंदर जाएगा। अब क्या हुआ कि मैंने सुबह कर लिया, अब हूं मैं इतनी शक्तिशाली आत्मा नहीं, पर मैंने कर लिया। अब 2-3 घंटे बाद कोई ऐसी परिस्थिति आई जिससे जो मेरे नॉर्मल संस्कार हैं उस वक्त, जो मेरी वृत्ति है, मान लो भय की है या सहन करने की है, गुमसुम, वो आएगी। लेकिन आपको ये जरूर याद आएगा कि आज मैंने से संकल्प किया हुआ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा और बाबा मेरे साथ है। तो जरा सा आपको जो पहले आप बहुत ज्यादा उससे घबरा के असर में आ जाते थे, थोड़ा ब्रेक लगेगा जरा सा, फिर आपको आएगा कि भाई और अटेंशन रखो। तो अगर आप दिन में 3-4 बार भी उस संकल्प पे अटेंशन रखेंगे तो अवश्य ही हमारी वृत्ति में फर्क आएगा। तो हमें ये जो बाबा बहुत समय से कहते हैं शुभ संकल्प, शुभ संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। यहाँ तक के सारी दुनिया का परिवर्तन होना ही शुभ संकल्प से है, शुभ भावना और शुभ कामना से होना है। तो वो हमारे अंदर कितनी होनी चाहिए, तो इसलिए ये तो हमें अगर आपके जो बाबा की सेवा बताई है उसको अगर हमने प्रैक्टिकल में लाना है तो शुभ संकल्प के महत्व को जानते हुए विशेष जो जो चीज हमारे में अभी भरनी है उसका शुभ संकल्प हमें करना है। लेकिन अब इसमें लेकिन भी आता है, क्योंकि रास्ता बड़ा इजी है, लेकिन अगर उस रास्ते को इजी वाले को भी मैंने पूरी तरह से अब तक की चढ़ाई को ठीक तरह नहीं चढ़ा तो फिर वो रुकावट भी आती है। इसलिए फिर और भी दृढ़ करना पड़ेगा उसको, क्योंकि मैं और सारे जा रहे हैं, मेरी टांगों में दर्द है तो मैं ध्यान रखूंगा ना, मैं पीछे ना रहूं, कुछ साधन करूंगा। अब आप देखिए कि जैसे बाबा ने हमें एक्सरसाइज बताई है कि बच्चे आप फरिश्ता रूप धारण करो, ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं फरिश्ता रूप हमारा ही है, शरीर को छोड़कर फरिश्ता रूप बनना है। अच्छा, फरिश्ते में अभिमान होता नहीं? अगर मेरे अंदर यहाँ अभिमान है और मैं फरिश्ता रूप धारण करूं तो बुद्धि से तो कर लूंगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल मुझे फीलिंग आए कि मैं फरिश्ता रूप में आ गया वो नहीं होगा। इसी प्रकार से अब हमने सोचा शुभ संकल्प करें, लेकिन व्यर्थ संकल्पों की बहुत आदत है, अब ये रुकावट बन जाएंगे, क्योंकि आदत है व्यर्थ संकल्पों की, शुभ उसमें करना है। तो जब आप शुभ करने की कोशिश करेंगे तो अनेक जो सारा दिन अभ्यास है व्यर्थ का वो उसको आने नहीं देंगे, बड़ी मुश्किल से आएगा तो कमजोर आएगा, फिर जल्दी से गायब हो जाएगा। इसलिए जो हमारी ग्राउंड प्रेपरेशन है वो हमें अगर नहीं भी की है अब हमको खास ध्यान रख के वो करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं चलो बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, क्योंकि अगर हम अशरीरी बनेंगे की अभ्यास करेंगे तो ही कर्मातीत बनेंगे एंड में जाकर। अच्छा, बाबा ने कहा अशरीरी बनो, इसमें भी रुकावट आ जाएगी, क्योंकि जब बाबा ने पहले हमें बीके बनाया तो क्या किया हमने, बाबा ने कहा बच्चे मर जीवा बन जाओ, शरीर तुम्हारा वही है लेकिन मेरी गोद में आकर ब्राह्मण बच्चे बन जाओ। इतना बनने से ही बाबा ने हमको आयरन एज कलजुगी जीवन से चेंज करके और अलौकिक जीवन दे दिया और गोल्डन एज भी दे दिया कि ये तुम्हारा है और इसमें आओ। हर एक को अनुभव है कि एकदम दुनिया के लोगों की भेंट में तो बिना किसी मेहनत किए भी जो बच्चा बीके बनता है बाबा उसको ये वरदान दे देते। अच्छा, अब हम बन गए तो बाबा ने कहा ये ब्रह्मा बाबा जैसे हैं, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को शरीर दे दिया, अब वो शरीर किसका है, ब्रह्मा बाबा उसका केयर टेकर हो गया, अपना शरीर हो फिर भी थोड़ा 19-20 हो जाए, अब शिव बाबा का शरीर है तो दूसरे की इमानत को तो बहुत ज्यादा ध्यान से रखा जाता है, फिर तो उस पर अपना अधिकार नहीं है तो मेरा है ही नहीं। अच्छा, अब हमने भी दे दिया बाबा को बॉडी दे दिया और बाबा कहता है अशरीरी बनने के लिए देह का त्याग आवश्यक है, और हम सब ने किया, लेकिन कंप्लीट किया, कंप्लीट किया। आप अपना मकान किसी को दे दें, किराए पर दे दें या वैसे, अब आपका तो अधिकार नहीं है उस पर। आप मकान किसी को देकर अगले दिन जाके उसके किचन में तो भोजन नहीं बना सकते हो, कहेगा भी तुमने तो मकान दे दिया। अब बाबा कहता है दे दिया, अब मकान आप दे दें लेकिन मकान का किचन ना दे, बरामदा ना दे, तो कह दी मकान मैंने दे दिया। अब हमने क्या किया, दे तो दिया और बाबा के कार्य में भी लग गए। लेकिन उसके जो 24 घंटे साथ रहने वाले खिड़की दरवाजे हैं, आंखें हैं, कान हैं, फिर मन है, बुद्धि है, अपने पुराने संस्कार हैं, वो साथ में दिए या कुछ रख लिया। तो बाबा कहता है आमतौर पर बच्चे क्योंकि बहुत दे देते हैं ना, तो समझते 95% तो दे ही दिया है, 5% ये चलो थोड़ा इधर भी रखना अच्छा है, है? तो मिट्टी का मटका रख लिया जो टूटना भी है, और बड़े खुश हैं कि हमने ये रखा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति तूफान आने पर 40 खिड़कियां हैं, 39 बंद कर ले, एक खुली छोड़ दे, तो फिर क्या होगा। अब ये हम इतना जरा से त्याग से इतना सारा भाग्य, वो भी गॉडली, रोज बाबा कहता है कि डायरेक्ट तुमने दिया जरा सा पुराना तो तुम्हें स्वर्ग में 21 दिरहम का देता हूं। अच्छा, उस वक्त तो लेने की खुशी थी कि बाबा क्या दे रहा है, ये क्या है, परंतु क्योंकि वो मटका रखा हुआ है, कोई ना कोई इंद्री रखी हुई है, तो कुछ समय बाद लेने की खुशी लुप्त हो जाती है और देने का भाव है, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, तो त्याग का ख्याल ज्यादा आने लग जाता है और भाग्य छुप जाता है। अच्छा, फिर बैठ गए, मैंने शरीरी बनना है, शुभ भाव से बैठे, अर्नेस्टली बैठे, अच्छी इंटेंशन से बैठे, लेकिन वो जो नीचे वाला मटका रखा हुआ है वो खींच लेगा। आप कोशिश करो जो ऊपर जाने को, फिर खींच लेगा, आप फिर कोशिश करो जो फिर खींच लेगा, तो क्या हुआ कि ऊपर जाने नहीं देगा आपको, शरीर भी बनना भी मुश्किल कर देगा, और ये ध्यान ज्यादा आ जाएगा, मैंने ये त्याग किया वो त्याग किया, तो भाग्य बादल के पीछे चले जाएगा। अच्छा, पहली बात तो ये है। उसके बाद बाबा कहता है तन मन धन, तो लौकिक को अलौकिक कर दो, अब आगे चलिए। हमने कहा कि बाबा सब तुम्हारा हमने त्याग कर दिया, बीच में जिसको हम कहते हैं अपनी बुद्धि, एक तो ऋषि मत, एक अपनी बुद्धि, तो अपनी बुद्धि भी बीच में चलाते रहे। श्री मत के ऊपर तो कुछ है नहीं, एक बार ही मान लिया, श्री मत से ही हमारा कल्याण है। तो बाबा कहते हैं जैसे रावण के 10 सिर होते हैं, तो 10 सिर मैंने वो बहुत सोचते हैं, जैसे बाबा ने बताया क्यों, क्या, कैसे, कैसा क्यों, वैसा क्यों। तो अगर हमें यज्ञ के सरेंडर होकर, हम हो गए यज्ञ के वकील, हमें हर चीज बाबा की तरफ से देखनी है, माया की तरफ से नहीं देखनी। अगर हमारे अंदर तब भी क्यों क्या के प्रश्न उठते हैं तो फिर क्या होगा, तो सरेंडर तो किया नहीं बुद्धि को, या फिर अपने अंदर कोई विशेषता है। बाबा ने कहा तुम विशेषता और कमजोरी दोनों से सरेंडर होते हो, अब कमजोरी तो मैं सरेंडर कर दी, विशेषता नहीं करी, मेरी है। तो बाबा कहता है इसके कारण भी आपको वो जो होना चाहिए वृत्ति पावरफुल वो नहीं होती, आत्मिक तरीके से होती है। अब बाबा कहते हैं ज्ञान की प्राप्तियां तो बहुत हैं, मान लीजिए आपको ज्ञान बहुत अच्छा समझाना आ गया, बहुत लोग प्रभावित हैं, आपका नाम लेते हैं, तो आप जाके कहते हो बाबा मेरे कुछ नहीं, मैं तो निर्माण आत्मा हूँ, आपका ही ज्ञान सुनाता हूँ, लेकिन लोग मुझे बुलाते हैं, लोग मेरा ही नाम लेते हैं, इसी को बुलाओ भाषण करे आके। फिर बाबा कहता है इसका मतलब हुआ तुमने लोगों को भी अपने तरफ खींचा हुआ, मेरी तरफ तो योग नहीं लगवाया। तो इस तरह की चीजें फिर हमारी शक्ति को कम कर देती हैं। आगे चलो, अब हर त्याग का भाग्य जरूर मिलता है। हमें देखो, जिस चीज ने जितना त्याग किया उसको भाग्य मिला। अब भाग्य को हम अपना मान लें तो बाबा कहते हैं जब तक भाग्य का भी त्याग नहीं करोगे तो वहीं फंस जाओगे। ये बहुत अच्छा आपका हो गया, सेंटर बन गए, मकान बन गए, साधन मिल गए, स्टूडेंट मिल गए, आपके नाम पर्टिकुलर नाम से लोग कोई विशेषता भी वर्णन करते हैं तो फिर आपको आएगा ये मेरा है, मेरी मेहनत से ये पैदा। तो वो भी आई और माई जो है, दे और दे की सभी संबंधित चीजें वो त्याग नहीं किया। तो उसका नतीजा क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं किसी लिमिट में आ जाते हैं। और हम बाबा के टोटल सरेंडर हैं तो बाबा के तहत टोटल शक्ति मिलेगी, आपकी वृत्ति सारी बाबा में जाएगी। इसलिए बाबा ने भुजाओं का नाम लिया हुआ है। एक तरफ रावण के 10 सिर हैं, वो आपको क्वेश्चन में लाएंगे। अगर हमने सोच लिया मैंने सोचना ही नहीं कुछ, भगवान यज्ञ को चला रहा है, उससे बेहतर क्या मैं चला सकता हूँ? अपनी अल्प बुद्धि से मैं सोचूं ऐसे नहीं, ऐसे है, ये ऐसे हो गया, भगवान के यज्ञ में ऐसे होता है, आदि आदि। तो बाबा कहते हैं ये सब आपको फुल सरेंडर से किनारे कर देता है। मान लो किसी हॉस्पिटल में, बहुत फेमस हॉस्पिटल है कैंसर का, और एक पेशेंट को उसमें दाखिल होना है। अब वो जाएगा तो क्या पूछेगा कि आपने वहां लिखा हुआ भी होगा, हमने बड़े बड़े पेशेंट, बड़े होपलेस केस को ठीक कर दिया। तब आप दाखिल होते हैं। अगर आप उस हॉस्पिटल में पूछें आपने कितने पेशेंट मार दिए या कितने पेशेंट मर गए आपके हॉस्पिटल में, तो फिर दाखिल होगा उसमें। ऐसे ही कोई स्कूल कॉलेज में जाए तो वहां लिखा होता है हमारा फलाना स्टूडेंट फर्स्ट आया फलाना, उसको देख के लोग दाखिल होते हैं। कोई कह दिए लिस्ट दो तुम्हारे फेल कितने हुए हैं, तब तो हो चुका मामला, उन्होंने थोड़ी मारे हैं, वो तो अपने कोशिश किया, बेस्ट से बेस्ट उनका था। इसी प्रकार से जब बुद्धि टेढ़ी होती है तो फिर हम इस तरफ खिसक जाती है। तब बाबा कहता है भुजाएं बनो, उंगली भी बन जाओगे तो मददगार होगी, भुजा भी होगी तो मददगार होगी, दिमाग नहीं चलाओ। इसलिए बाबा कहता मन मना भाव। तो सरेंडर की निशानी ये है कि वो ठंडा रहे, और जैसे जानकी दादी जी कहते हैं कि धैर्य में रहे। तो किसी चीज में जल्दी से तेजी करके अपना निर्णय कर लेना, अपसेट हो जाना, तो ये ड्रामा के ऊपर चलने वाली बात तो नहीं हुई ना। अच्छा, फिर इसके पश्चात क्या होता है, या तो फिर मेरा करते हैं, फिर उसके बाद बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प। अगर हमने अपने पुराने खाते को, जो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, तो कई आत्माएं और चीजों पर ध्यान देंगी, धारणा पर ध्यान देंगी, ज्ञान सुनाने पर ध्यान देंगी, मैनर्स पर ध्यान देंगी, लेकिन विकर्मों का जो बाबा कहता है योग का विषय, उसको कम ध्यान देंगी। फिर क्या होता कि बाबा कहता है कि सेंसिबल तो बन जाते हैं, सेंसिबल मैंने दुनिया की भेंट में छोटा बच्चा भी बाबा का क्या ज्ञान सुनाता है वो सब लोग वंडर करते हैं, लेकिन असेंसफुल नहीं बनते। उस सारे फैलावट में विस्तार बहुत बताएंगे, लेकिन जो उसका सार है ना तो जीवन में होगा, विस्तार की टहनियों पर नाचेंगे, और ना ही दूसरे को सार में बता सकेंगे। तो हमारे तो असार बिंदी है, तो इसलिए फिर दूसरा जो होगा सर्विसेबल होंगे, सब जगह आएगा, अखबारों में आएगा, अवार्ड दिए जाएंगे, नाम होगा ब्राह्मण कुल में ये हैं। लेकिन बाबा कहता है विघ्न विनाशक नहीं होंगे, कि अपने भी विघ्न विनाश नहीं कर सकेंगे, अंदर ही अंदर एडजस्ट करके चलते रहेंगे, और दूसरे को भी जो अपने पास है वो दे के विशाल तो बना देंगे, पर रास्ता क्लियर हो, इजी हो, वो फील नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट भी नहीं रखेंगे, पिछले विकर्म विनाश नहीं करेंगे, तो जैसे हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि शरीर छोड़ने पर वो क्या होता है, जमदूत आ जाते हैं, तो बाबा कहता और कुछ नहीं आता, ये अपने ही संकल्प आते हैं। तो हमें आप देखो योग एक घंटे का लगाना है, सभी लगा रहे हैं, और उसमें कितना टाइम मेरा पिछले भी संकल्प तंग करते रहते हैं, विकल्प तंग करते रहते हैं, इस जन्म की बातें याद आती रहती हैं। तो बाबा कहते तुमको तो इतने जन्म लिए हैं और तुमको तो चक्कर घुमाना है, कभी हमने रियली घुमाना है, ऐसे नहीं बुद्धि से घुमाना है। फर्क यह है कि अगर हम साथ साथ नहीं सब चीजों का ध्यान रखेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे, तो बुद्धि से सब काम कर लेंगे। बुद्धि से आप यात्रा भी कर लोगे, तीनों धामों की कर लोगे, जैसा होगा कर लोगे, बुद्धि से आप मनसा सेवा भी कर आओगे। बाबा कहते हैं अलग अलग रिलेशन मेरे साथ रखो, बुद्धि से आप ये भी करोगे मेरा पिता है, टीचर है, सतगुरु है, सखा है, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो इसलिए फर्क पड़ जाएगा। अब बाबा कहता है तो आगे जैसा हम जानते थे वर्णन भी कर देते थे दूसरे को, कई बार दूसरा लेने वाला ज्यादा सीरियसली करके सफलता भी पा लेता था। अब बाबा कहता है वो सुनने सुनाने का, वर्णन करने का, विस्तार का टाइम नहीं है, ना तो समय होगा और ना ही लोगों की रुचि होगी। तो उसके लिए जैसे शिव बाबा का क्या संकल्प है, पहली बात कि शुभ संकल्प है, ठीक है। शिव बाबा का किसी भी परिस्थिति में शुभ संकल्प ही रहता है, चाहे कोई कैसा व्यक्ति हो। क्यों? ड्रामा है, तो ड्रामा को शिव बाबा हमें भी बताता है कि हर चीज में कल्याण है, किसी की टांग टूट गई उसमें भी कल्याण है, कुछ भी हो जाए उसमें कल्याण है, और कोई कैसा व्यवहार कर रहा है उसमें भी कल्याण है। पर हम क्या करते हैं, व्यवहार में आते आते अचानक वो इस बॉडी में आ जाते हैं और ज्ञान सारा पीछे रहता है बैकग्राउंड में, फिर क्या करते हैं कि दूसरे के रोल को ऑब्जेक्शन लगाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम फिर कहते हैं ये तो हम यज्ञ के हित में कह रहे हैं ना, हम देख रहे हैं ये व्यक्ति ऐसा खराब काम कर रहा है, तो हमारा फर्ज नहीं बनता, हम तो सच बोलते हैं ना। तो किसी भी एक विशेषता पर अड़ गए तो बाबा क्या कहता है, जो जिद करता है वो सिद्ध करने की कोशिश कर सकता है कि करता कि मैं ठीक हूं, इसलिए वो फिर उनको दूसरी बातें समझ में नहीं आती कि दूसरे कुछ और कह रहे हैं। इसलिए मान लो रामलीला हो रही है, अच्छा कोई व्यक्ति रावण के पास जाए कि देखो भाई इतना भयानक चेहरा बनाया हुआ है, बड़े बड़े मूछ है, हा हा करता है, बच्चे डरते हैं, तू काहे को ये रोल कर रहा है, लक्ष्मण जैसा हो जाए, मूछ मूछ बढ़ा के भोला भाला बन के रहे। और मान लो उसकी मत मान ले तो रामलीला चलेगी, सवाल ये है। इसलिए हर चीज जो फिक्स है, और बाबा ने क्या रखा, एटर्निटी, एटर्निटी मैंने फायदा नुकसान तो कुछ है ही नहीं। अगर आप गौर से देखें कि ना तो आत्मा ने खत्म होना है, और जिस युग में आना उसको वो पास करना ही है, और वो रहना भी नहीं, उसमें क्रॉस भी कर लेना है। तो जब सारा ही सिस्टम ही ऐसा है, सिर्फ उसमें चक्कर बने हुए हैं, तो कोई ये समझ जाए कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आना ही है, सतयुग के बाद कलयुग के बाद सतयुग आना ही है, दुख दाम में जाओगे तो दुख मिलना ही है, लाख जतन कर लो। फिर ब्राह्मण जो टेम्परेरी चीज है उसकी ओर बहुत ध्यान देंगे, नाम लेंगे ज्ञान का। बाबा कहते हैं ना ये शरीर बड़ा वैल्यूएबल है, संगम का शरीर है, बड़े ध्यान से रखना है, मुरली तय मिस्ट हो जाए सैर जरूर करना है, शरीर चाहिए। अच्छा अब बाबा कहता है गौर से सोचो कि अगर हमें रोग आता है, तकलीफ आती है, कर्म भोग आता है, रोज कहता है, तो कर्म भोग तुम्हारे हिसाब किताब से आता है, क्या वो बाबा कहता है एवर हेल्दी मेरे साथ आत्मा योग लगाएगी बनेगा, वो तकलीफ आत्मा से निकालनी है या शरीर का ये ठीक कर लिया तो यहाँ आ जाएगा। जब तक आपका अकाउंट क्लियर नहीं है, मैं एक से उधार लेके दूसरे को दे दूं, वहां तो क्लियर हो गया, उसका कट जाएगा। इसलिए बेसिक हमें ये देखना है कि हमारा टाइम एनर्जी परमानेंट की तरफ लगा हुआ है और उसका परमानेंट क्योर हम कर रहे हैं या टेम्परेरी कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा है मेरे को याद करो आप एवर हेल्दी बनेंगे, बाकी नाम मात्र दुनिया के हैं, जैसा हो करो, लेकिन उसके ऊपर इतना दृढ़ निश्चय नहीं करो कि भगवान से भी डॉक्टर ज्यादा ताकतवर है या इस या ये फल खाऊंगा तो मेरी हेल्थ थोड़ा बन जाएगी। ऐसे तो बहुत लोगों के पास फल बहुत रहते हैं, वो बीमार ज्यादा रहते हैं। बाबा ने प्रूव किया हुआ ब्रह्मा बाबा ने कि इतने दिन रोजा खाओ कुछ नहीं होगा। फिर वो कहता है वल्दी, अब हम कहीं बैठ करके यहाँ जिज्ञासुओं का ध्यान रखे कि इससे पैसा ले लें, हाय मेरा जिज्ञासु वहां चला गया, आधा किराया तो ये देता था, इसका मतलब हुआ कि मैं सेंटर मैं चला रहा हूँ, बाबा तो नहीं चला रहा। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी गलत है, उसके कल्याण का भाव ना रख के आपके मन में एक वृत्ति आ गई वो भी तो काम नहीं करेगी। इसलिए वो कहता है सिंपल बात है, अपने सारे चक्कर को घुमाओ ताकि यहाँ का छोटा मोटा इस जीवन का ध्यान में ही नहीं आए। जब आप सारे सतयुग में घूमोगे अनुभव करके रेता में घूमोगे तो ये तो छोटा सा जन्म है और ये भी आपने बाबा को दिया हुआ है, तो उसमें भी फिर ज्यादा इस तरफ बॉडी की तरफ साधनों की तरफ, तो उससे हमारा जो लक्ष्य है उसे सही जाता है। तो फाइनली बाबा ने ये कहा हुआ है कि जो हमारी लास्ट क्वालिफिकेशन है, जो देवताओं की लास्ट क्वालिफिकेशन है, हमने वो देखनी है। ठीक है, अब लास्ट क्वालिफिकेशन में यही आता है सर्वगुण संपन्न। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम मान लो काफी गुण संपन्न है, वो तो है बाबा ने कर दिया, लेकिन जो बाकी है उसकी तरफ ध्यान देना कि ये भी आ जाए। किसी चीज में बहुत सारी चीजें ठीक हो, एक आध कम हो तो नुकसान करता। अच्छा, फिर बाबा कहता है संपूर्ण निर्विकारी। अब संपूर्ण निर्विकारी में क्या कुछ आ जाता है, हम सबको बाबा ने ज्ञान दिया हुआ कि विकारों का अंश भी विकार है तो गुण हो नहीं सकते, तो वह जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। सूक्ष्म अभिमान भी विकार है, नयापन भी विकार है, दूसरे से आगे होने की कोशिश करना छोटी बहुत सारे वर्णन है, उसमें मैंने जाना नहीं क्योंकि मुझे इस प्रपंच में पढ़ना है तो मुझे फरिश्ता बनना है, उसकी मेहनत करूंगा। तो हम चावा कहते चलो आपका क्लियर नहीं भी है, अगर आपने शुभ भाव रखा तो भी मैं मदद करता हूँ कि क्लियर कर लेगा बच्चा, चाहता तो है ना क्लियर करना, मैं इसका करूँ। अगर बाबा क्लियर करवाए हम फिर किसी के उंगली छुड़ा के फिर चले गए, फिर कहें बाबा आप ठीक कर दें फिर चले गए, तो बेसिक तो हमने करेक्ट नहीं किया ना। इसलिए गुण ग्रही बाबा ने कहा, अवगुण तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और बाबा कहता है खराब चीज से भी आप गुण निकाल सकते हैं। जैसे बाबा ने पीछे जॉर्ज बुश का मिसाल दिया, अमेरिका का प्रेसिडेंट है तो दूसरे संप्रदाय का, पर बाबा ने कहा उसमें एक खूबी है तो जो कहता है ना वो करके दिखाता है। हमें ये खूबी धारण करनी चाहिए कि जो हम संकल्प करते हैं करके दिखाएं। हम कहते हैं माया बड़ी पावरफुल है, चलो माया में ये तो गुण है वो पावरफुल है, तो हम उसका पावरफुल का गुण ले लें, तो हर चीज में से गुण लेने वाला तो ले लेगा। जिसने उल्टा देखना है वो तो कहेगा हाय माया बड़ी पावरफुल है, इसका मतलब मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, उसका क्या फायदा। इसलिए गुण ग्रह, और फिर दूसरे बाबा कहता है दाता, हमें दाता के संस्कार हैं तो हम सब बाबा के बच्चे दाता के बच्चे दाता, लेकिन किसी ना किसी ढंग से कुछ ना कुछ भी, यानी अगर कहीं ना कहीं कुछ भी लेने की इच्छा है, मैंने इतना ये किया कम से कम मेरा नाम तो ले दें कि मैंने किया, ऐसे अरे गहरे बाबा के पास चले जाते हैं, मैं इतना सेवाधारी हूँ कभी मैं भी तो चला जाऊं, भाई ये कहा तो आपने अपना जो कमाई हुई हुई है ना अंदर वो ड्रेन हो जाएगी। इसलिए ना आए तो अच्छा है, ना बुलाए और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें मेरी शक्ति तो कायम रहेगी ना, तो बार्गेन हमने अपनी प्राप्ति का नहीं करना। तो प्राप्ति का भी संन्यास इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतने गुण ग्रही हो दाता के बच्चे दाता के, लेने का तो सपने में भी सवाल ना है। और बाबा कहते हर एक आपसे लेके जाए, तो वो तो तभी हो सकता है कि अगर हमारी सारी दिनचर्या ऐसी हो जो अलौकिक हो, तो आपको कोई बात से गुजरे वो भी ठीक तरह जाए, अगर हमारी आवाज में भी फर्क आता है, कुछ लौकिकता आती है, तो वो सेवा नहीं करेगी। तो इसलिए इतना, जैसे सागर को कोई आग नहीं लगा सकता, कोई समुन्दर को आग लगा सकता नहीं, समुन्दर में जितना मर्जी पेट्रोल डाल दो आग बुझ जाएगी, समुन्दर तो समुन्दर ही है और हम सागर के बच्चे हैं। तो कोई हमें आके क्रोध कर जाए, क्रोधित कर जाए, तो मेरे पर अटेंशन नहीं है ना, मैं कहता चलो क्रोध तो साधारण चीज है। तो बाबा कहते साधारण नहीं। अब जैसे समय का मूल्य बाबा ने बताया हुआ कि ब्राह्मणों के एक सेकंड का कितना मूल्य है, बताता है ना। अब बाबा कहते कि भक्ति मार्ग में भी आपके मूर्तियों का भी इतना मूल्य है कि भगत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, तो मूर्ति का दर्शन करवाया जाता है पर्दा हटा के, तो वेट करते रहते हैं, थोड़ी देर के बाद बंद कर दिया जाता है कि भाई इतना मूल्य आपके दर्शन का भक्ति मार्ग में है। अच्छा, वो मूल्य हमने पैदा किया होगा यहाँ, इसलिए हमारा, वैसे भी बाबा कहते हैं किसी भी VIP का टाइम इम्पोर्टेंट होता है, उसका दिनचर्या बनी हुई होती है, ऐसे नहीं इधर गए उधर गए दिन पार हो गया, नहीं। तो आप भी VIP हो तो अपने टाइम को, कई ब्राह्मण क्या सोचते हैं, वो भी एक बहुत अजीब बात है, वो सोचते हैं हमने मुरली सुन ली, हमने क्लास कर ली, जो भी नियम के प्रमाण दिनचर्या थी वो कर ली, योग में भी बैठ गए, कहीं धन देना था दे दिया, कहीं उन्होंने कहा कर्म ना, बस उसके बाद तो जिसको हम कहते हैं ना कॉम्फर्ट जोन, कि ब्राह्मण जिसको हम आलस्य कहते हैं, तो आलस्य का मतलब क्या है, काम कुम करके रेस्ट में चले जाएगा, ये मेरा बहुत सुख का पीरियड है, हाँ? अच्छा, तो इसको इसको आलस्य कहा जाता है। तो आलस्य बाबा ने कहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्राह्मण को रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई रिस्पॉन्सिबल हो, किसी डॉक्टर की ड्यूटी हो कि तुझे नाइट ड्यूटी में रहना है, तो कई पेशेंट इधर उधर के हैं, वो कह दी ठीक है कंपाउंडर कर लेगा, तो वो नहीं, तो फिर एक तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को दे देते हैं। कई बार हमने देखा है किसी को इंचार्ज बनाओ, तो पहले पहले खुद करेगा, फिर दो चार अपने असिस्टेंट रख लेगा, वो करेंगे, वो कहेगा काम ही कराना ना, ये कर रहे हैं, पर भाग्य तो उनका बन रहा, मेरा तो नहीं बन रहा। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा कहता जिम्मेवारी का ताज। अब दादियों को देखो, ब्रह्मा बाबा को देखो, वो रेस्ट में भी कंफर्ट फील करता है कि सेवा में खुशी है। तो एक तो आलस्य और दूसरा लक्ष्य रहित, ये भी चलते चल रहे हैं, जो मिल जाएगा वही ठीक है। सज्जुग में तो पशु पंछी भी सुखी रहते हैं, आयु पूरी होती है, मुझे किसने पहचानना है तो फलाना है, दास भी बना हुआ होगा तो किसी को पता थोड़ी है। तो ये जो तरह की फीलिंग है बाबा कहते हैं ये तो और भी खत्म हो गया, इसको अलवेलापन कहते हैं। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि मुझे बाबा के साथ इस दुनिया को शुद्ध करना। अब तत्वों को आपका ये जो शरीर है इन्हीं तत्वों का थोड़ी मिल जाएगा, या वहां नए तत्व मिल गए तो आपको फ्री में मिल जाएगा, आपको उसे भी कमाना है, चाहे आप त्रेता वाला शरीर कमा लो, चाहे सज्जु के बीच का कमा लो, तो उतना रिफाइन करना पड़ेगा ना। तो काम तो सारा वृत्ति करती है, तो इसलिए अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाना, श्रेष्ठ बनाना और पावरफुल बनाना, ताकि बिना बोले, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको नाम कमाने की जरूरत नहीं, बस। देखो हमारी मम्मा थी, उसने तो विदेश भी नहीं देखे थे, पर विदेशियों की भी मम्मा तो है ना, तो कैसे, तो जो जल्दी कंप्लीट होता है ज्ञान में उसको ज्यादा पास्ट ऑनर गिनते हैं। तो इसलिए सारे देखो मम्मा बाबा मम्मा, उन्होंने अपना फिक्र किया ना, बाकी दुनिया का फिक्र आपका ही हो जाएगा। तो अपने ऊपर मेहनत करना ही सेवा है, और अब तो बाबा ने कह दिया अपनी वृत्ति पर मेहनत करो ऑटोमेटिकली। यहां भी आप देखेंगे गुलजार दादी है, अनाउंस होगा कल शाम को गुलजार दादी का क्लास है, ताली बज जाएगी, उसमें 60% नए होते हैं, तो कैसे बच जाती है, वाइब्रेशन है ना, वो थोड़ा सा बोलती है, लेकिन वो बोलती है, सेंस बोलती है, दिल को लगता है जाकर। इसलिए हम भी कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। तो बाबा कहता है, आखिर बाबा यही कहता है, जल्दी से जल्दी बाबा की प्रत्यक्षता हर बच्चे की प्रत्यक्षता के ऊपर निर्भर है। हर बच्चे के अंदर जो बाबा ने गुण दिए हैं, बताए हैं, संपूर्णता की झलक आए, है ना, जब कोई फसल पकती है तो सब पक जाती है, तो वो आए उसके प्रत्यक्षता होगी। अब हमारा काम सुनना सुनाना कम और वृत्ति को ताकत बनाना ज्यादा, और वृत्ति ताकत बन बनेगी शुभ संकल्पों के भोजन से। ओम शांति।